पृष्ठ संख्या 262। जब 1947 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों में खून की नदियाँ बह निकली तो उर्दू के सभी अच्छे लेखकों ने उस पर कुछ न कुछ लिखा। कई उपन्यास भी इसी समस्या को आधार बनाकर लिखे गए। इनमें केवल रामानंद सागर की रचना और इंसान मर गया, कुदरतुल्लाह साहब की या खुदा और कुर्रतुल ऐन हैदर कि मेरे भी सनम खाने महत्वपूर्ण है। सागर का उपन्यास लेखक की सहृदयता, मानव प्रेम और अत्याचार के विरुद्ध घृणा का पता देता है, परंतु इसमें भावुकता का अंश इतना अधिक है कि दुराचारों के विरुद्ध मनुष्य हार मानने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। शहाब की रचना कला की दृष्टि से सर्वोत्तम है, यद्यपि इसमें कहीं कहीं सांप्रदायिक भावनाएं भी झलक पड़ती हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर ने ऐसे भी सनम खाने लिख कर बड़ा यश प्राप्त किया। इसमें 1947 के झगड़ों का उल्लेख कम है, परंतु जितना भी है वह बड़े करुणाजनक ढंग से लिखा गया है। उनके और उपन्यासों का वर्णन आगे के अध्याय में आएगा। डॉक्टर अहसन फारूकी ने शामे अवध के नाम से एक उपन्यास की रचना की, जिसमें गदर के बाद के लखनऊ की स्थिति और सामाजिक दुर्दशा का चित्रण बड़े वास्तविक ढंग से किया गया है और मिटती हुई नवाबी सभ्यता की तस्वीर खींची है, परंतु इसमें किसी प्रकार की ऐसी गहराई पैदा नहीं हो सकी जिसमें स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता। फिर भी भाषा की सुंदरता और पात्रों के सच्चे चित्रण के कारण यह उपन्यास अपना विशिष्ट स्थान रखता है। उन्होंने कई और भी उपन्यास लिखे हैं जो कोई ऐसी विशेषता नहीं रखते जिसका उल्लेख हो सके, केवल संगम कुछ महत्वपूर्ण रखता है। इस अध्याय में बहुत से अच्छे उपन्यासकारों की चर्चा नहीं हो सकी है। इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने कई रचनाएं की और कुछ लोग उन रचनाओं पर मुग्ध भी हैं, लेकिन जब हम उनका अध्ययन साहित्य आलोचना की दृष्टि से करते हैं तो वह बहुत लोकप्रिय होने पर भी महत्वपूर्ण नहीं देख पड़ते। जैसे एम असलम, रशीद अख्तर नदवी, रईस अहमद जाफरी, कैसी रामपुरी इत्यादि। इनके अतिरिक्त फयाज अली के दो उपन्यास शमीम और अनवर बारंबार प्रकाशित होते हैं और बहुत पढ़े जाते हैं। इसी प्रकार पंडित किशन प्रसाद कौल के उपन्यास श्यामा, मजबूरे वफा और साधु की बेशवा समाज सुधार की भावना से भरे हुए होने के कारण अपना महत्व रखते हैं। आदिल रशीद, महेंद्र नाथ और ए हमीद ने भी थोड़े दिनों में पृष्ठ संख्या 263 बड़ा यश प्राप्त किया है और जीवन की भिन्न भिन्न समस्याओं को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। उपन्यास पूंजीवादी और नई स्थिति में नए मार्गों पर विकसित होती हुई सभ्यता का चित्रण जिस ढंग से करता है, वैसे साहित्य के किसी और रूप में नहीं होता। इसलिए संसार की सभी जीवित भाषाओं में उपन्यास कला को महत्व प्राप्त हो गया है। इस समय उर्दू के बहुत से नए लेखक उपन्यास लिखने में नई शैलियों का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ एक के प्रयोग सफल हैं और अनेक असफल, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि उर्दू साहित्य के इतिहास में शीघ्र ही कुछ अच्छे उपन्यासकारों को जगह मिल जाएगी। उर्दू में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और अरबी उपन्यासों के अच्छे अच्छे अनुवाद हुए हैं और इससे नए लेखकों को प्रेरणा मिल रही है। कुछ नए लेखकों का वर्णन अंतिम अध्याय में किया जाएगा। उर्दू में नाटक की उन्नति इतनी नहीं हुई जितनी होना चाहिए था। इसके कई कारण हैं, पर मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि यहाँ ऐसे मंच का विकास नहीं हो सका जो नाटककारों को आकर्षित करें। इसके अतिरिक्त अधिकतर नाटककार फिल्म और रेडियो के लिए लिख रहे हैं, फिर भी प्रोफेसर मुजीब, इम्तियाज अली ताज, उपेंद्र नाथ अश्क, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, इशरत रहमानी, अहमद अब्बास, सआदत हसन मंटो, मिर्जा अदीब इत्यादि ने बहुत से गद्य नाटक लिखे और प्रकाशित कराए हैं, जिन्हें बड़े उत्साह से पढ़ा जाता है। अच्छे अच्छे विदेशी नाटकों के अनुवाद भी हो रहे हैं, पर अभी उन्नति का पथ दूर तक फैला हुआ देख पड़ता है जिस पर इन नाटककारों को चलना है। नए युग के लिखने वालों में अधिकतर वे साहित्यकार हैं जो एकांकी ही लिख रहे हैं, उनमें कुछ रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखे गए हैं, परंतु अधिकतर आकाशवाणी के लिए ही हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के 7 लेख का उल्लेख हो चुका है। मंटो ने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एकांकी लिखे और उनके कई संग्रह 3 औरतें आओ, मंटो के ड्रामे के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। कृष्णचंद्र ने अपनी सामाजिक चेतना और मानव प्रेम की रुचि का परिचय अपने नाटकों में भी दिया है। उनके 2 संग्रह दरवाजे और दरवाजे खोल दो छप चुके हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास अली सरदार जाफरी, इस्मत चुगताई के नाटक भी लोकप्रिय हैं। अहमद अब्बास का जुवेदा मैं कौन हूँ तथा इस्मत के 2 संग्रह शैतान और धानी वाक्य उल्लेखनीय हैं। यह सब प्रगतिशील लेखक रहे हैं और इनकी कृतियों से जीवन के वही चित्र देख पड़ते हैं जो इनकी कहानियों और उपन्यासों में हैं। नाटक कला की दृष्टि से इन लेखकों ने कोई ऐसे प्रयोग नहीं किए हैं जो विचारणीय हों, परंतु इनकी कृतियों में जीवन संघर्ष का चित्रण बड़ा सबल, व्यापक एवं प्रभावपूर्ण है। प्रेमचंद की परंपरा में उर्दू से हिंदी में आने वाले लेखक उपेंद्रनाथ अश्क कथाकार से ज़्यादा सफल नाटककार हैं। उनके कई संग्रह पापी, अजली रास्ते, चरवाहे, कैद हयात उर्दू में प्रकाशित हुए हैं। पृष्ठ संख्या 264। उर्दू साहित्य में हास्य प्रधान लेखों का अच्छा भंडार मौजूद है। गद्य और पद्य दोनों में हास्य रस की परंपरा विद्यमान है। उसमें सामाजिक चेतना और देश की बदलती हुई स्थिति के फलस्वरूप तीव्र गति से उन्नति हुई है। नए साहित्यकारों में से कुछ का उल्लेख पिछले अध्यायों में हो चुका है, कुछ का संक्षेप में अब किया जाएगा। इस युग में कुछ ऐसे हास्यजनक लेखक एकत्र हो गए कि इसे उनका स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इनमें से कुछ केवल हंसी के फूल बरसाते हैं और कुछ उसी के साथ व्यंग के तीर भी चलाते हैं। इनमें रशीद अहमद सिद्दीकी सर्वोत्तम हैं। इनका उल्लेख पिछले अध्याय में हो चुका है। इनके अतिरिक्त अजीज बेगम चुगताई, पितरस बुखारी, शौकत थानवी, इम्तियाज अली ताज, नकारा, हैदराबादी, हाजी लक लक, सिंदबाद जहाजी, कृष्णचंद्र, कन्हैया लाल कपूर, शफीकुर रहमान इत्यादि ने बड़ी उच्च कोट की रचनाएं की हैं। अजीज बेग चुगताई 1895 से 1941 ईस्वी की मृत्यु समय के कुछ पूर्व हो गई, परंतु उन्होंने कहानियाँ और उपन्यासों की लगभग 20 पुस्तकें छोड़ी हैं। वह जोधपुर के रहने वाले थे, अलीगढ़ में शिक्षा प्राप्त की थी और जीविका के लिए वकालत करते थे। पहला लेख शरीरी बेबी लिखते ही उसकी धूम मच गई और थोड़े ही समय में उन्होंने कोलतार, खानम, चमका, कमजोरी, जन्नत का भूत इत्यादि कई रचनाएं प्रकाशित करा डालीं। ये पुस्तकें अब भी थोड़े उत्साह से पढ़ी जाती हैं। इनमें से कई लेख हिंदी और दूसरी भाषाओं में भी अनूदित हो चुके हैं। उनकी कहानियाँ अधिकतर मध्यम वर्ग के मुसलमान परिवारों का जीवन प्रस्तुत करती हैं। उनके पात्र जरूरत से ज़्यादा उछल कूद करने वाले देख पड़ते हैं। वह हास्यजनक घटनाओं से नाटकीय स्थिति पैदा करते हैं। कहा जाता है कि वह सदैव रोगी रहे, इसलिए उन्होंने शैया पर पड़े पड़े अपने जीवन के निकम्मेपन और आलस्य को अपने पात्रों को चंचल बनाकर मिटाने की चेष्टा की। पितरस 1898 से 1958 ने कुछ ही लेख लिखे, उन्हीं को एकत्र करके एक संग्रह पितरस के मजामीन के नाम से प्रकाशित करा दिया गया है। इसी एक संग्रह से उनको उर्दू के हास्यजनक लेखकों की पहली श्रेणी में रखा जाता है। उनके यहाँ हंसी अधिकतर बातों से पैदा होती है, परंतु उनकी बातें एक प्रकार की गंभीरता भी रखती हैं। उनके लेख कहानी और निबंध के मिश्रण से एक नई चीज बन जाते हैं। मनोविज्ञान की जानकारी और सुंदर शैली दोनों से मिलकर उनकी रचनाएं ऐसी नवीनता ग्रहण कर लेती हैं जो उर्दू के किसी और लेखक में नहीं पाई जाती। शैकत थानवी, जिनका नाम मुहम्मद उमर था, हास्य साहित्य के जनप्रिय लेखक थे। उनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हो गई। उस समय तक उनकी छोटी बड़ी 40 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं। कुछ पुस्तकें उनके देहांत के बाद भी छपीं। उनके लिए भी यही हुआ कि सन 1962 के लगभग उन्होंने एक कहानी स्वदेशी रेल लिखी। पृष्ठ संख्या 265। और उसी दिन से एक बड़े लेखक गिने जाने लगे। शौकत, थानवी शब्दों के प्रयोग और वाक्यों से भी हंसी पैदा करते थे और ऐसी हास्यजनक स्थिति का चित्रण भी करते थे जो हंसने पर मजबूर करे। उनकी बुद्धि की तीव्रता साधारण बातों को भी मनोरंजक बना देती। उनकी कुछ पुस्तकों के नाम यह हैं: मौजे, तबस्सुम, तूफान तबस्सुम, जोड़ तोड़, सौतिया चाह, कार्टून, माँ बदौलत, ससुराल इत्यादि। वह कविताएं भी लिखते थे और रेडियो के लिए बड़े लोकप्रिय नाटक भी, जिनके अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इस पीढ़ी के लेखकों में कन्हैया लाल कपूर, जन्म 1910 ईस्वी, ने कई बहुत अच्छे हास्यजनक और व्यंग्यपूर्ण लेख लिखे हैं। वह पंजाब के रहने वाले हैं और शिक्षा विभाग से संबद्ध हैं। उनके लेखों में अंग्रेजी के प्रसिद्ध हास्यजनक लेखकों का प्रभाव देखा जा सकता है। उनके लेखों के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम हैं: संगो खिश्त, शीशाओं तेशा, चंगो रबाब, नोके नश्तर, बालों पर नर्म गर्म और कामरेड शेख चिल्ली। उनके लेखों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना के अंश व्यापक रूप से मिलते हैं। पढ़ने में उनके लेख बड़े सरल और साधारण देख पड़ते हैं, परंतु उन्हीं शब्दों के नीचे हास्य और व्यंग्य के तीर छिपे होते हैं। दिन प्रतिदिन उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील और शैली रोचक होती जाती है। शफीकुर रहमान भी पंजाब के रहने वाले हैं और बड़े लोकप्रिय लेखकों में गिने जाते हैं। उनकी रचनाओं में कोई सामाजिक या राजनीतिक विषय नहीं होता, फिर भी उनके लेख साधारण जीवन से मनोरंजक कहानियाँ बना लेते हैं। उनकी लोकप्रियता का मर्म युवकों और युवतियों की साधारण भूल चूक और गलतियों के उल्लेख में है। उनके विषय गंभीर नहीं होते, परंतु एक घुटन से भरे वातावरण में उनकी कहानियाँ आनंदमयी स्वप्नों के रूप में आती हैं और जीवन के दुखों का बोझ कम करती हैं। उनके कुछ संग्रहों के नाम हैं: परवाज, सिगुफे, हिमाकते, लहरें और किरणें इत्यादि। उर्दू में हास्यजनक गद्य रचना की परंपरा 19वीं शती के अंतिम वर्षों में अवध पंच ने आरंभ की थी और जैसे जैसे भारत में नए और पुराने का संघर्ष बढ़ता गया, नैतिक जीवन दुर्बल होता गया और राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति जटिल होती गई, उतना ही हास्य और व्यंग्य के लिए विषय मिलते गए। जब वास्तविक जीवन और विचारों में बड़ा अंतर रहने लगा, उस समय उर्दू के लेखकों ने सोच विचार कर उसकी ओर ध्यान दिया और कहा जा सकता है कि भारत की अन्य आधुनिक भाषाओं को देखते हुए उर्दू में भी हास्य प्रिय साहित्य का कोष विस्तृत और उत्तम है। वर्तमान युग में जिस साहित्य रूप ने सबसे अधिक प्रगति की है, वह आलोचना है। पिछले अध्याय में इस ओर संकेत किया गया था कि नए लेखक जो किसी न किसी प्रकार से राष्ट्रीय और विश्व प्रगतिशील आंदोलनों से प्रभावित हैं, आलोचना के संबंध में भी नया दृष्टिकोण रखते हैं। इनका विचार है कि साहित्य सामाजिक जीवन पृष्ठ संख्या 266 से प्रभावित होता है और जीवन को प्रभावित भी करता है। साहित्य के स्रोतों को जानना, साहित्यकार की चेतना के अस्त्र को समझना और जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए आदर्शों से परिचित होना एक आलोचक के लिए आवश्यक है। समाज के भीतर चलते हुए वर्ग संघर्ष के निहित रूपों को लेखक की भावनाओं और अनुभूतियों के आंतरिक स्रोतों को खोज निकालना, साथ ही कला की परंपराओं और सौंदर्य के बदलते हुए सिद्धांतों को समझने की चेष्टा करना भी आलोचक का कर्तव्य है। रचनात्मक साहित्य का निर्माण करने वाले भी इन्हीं सीमाओं के अंदर रहकर काम करते हैं। इसीलिए यदि कुछ आलोचक उत्तरदायित्व का अनुभव रखते हुए जीवन और कला के संबंध पर जोर देते हैं, तो इसका यही अर्थ होता है कि उस रचना को दूसरी रचनाओं से अलग कर लिया जाए जो जीवनधारा का विश्लेषण करके उसे और प्रबल बनने की प्रेरणा देती है।